माइंडसेट फॉर सक्सेस इन स्पोर्ट्स है ना। काफी सुबह से आप लोग सुन रहे हो, बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं कि अपना माइंडसेट कैसा रखना है। खासकर यहाँ राजयोगा सेंटर यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको देखने को लगेगा कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है ना। कोई ऑलरेडी सेवाएं हैं, कोई पेमेंट नहीं है, डेडिकेशन पूरा है। अगर हम यही चीज अपने स्पोर्ट्स के लिए करें तो आप सोच सकते हो कि हमें कितना रेस्पॉन्स मिल सकता है लाइफ में अगर हम इस चीज को ऐड कर लें। मैं आपको एक क्लिप ये दिखाना चाहूंगा, पीवी सिंधु ये जब ओलंपिक में गई थी तो इसने किस तरह से
respected dignitaries on and off the dais, andariki namaskaram andi. It's a great privilege to be here today and I'm very thankful to you all because I feel because of your support and blessings I'm here today. And especially yes, I would like to say one thing that thank you sisters. I would like to thank everybody because they've really helped me and blessed me, because before going to the Olympics I've come here to the Brahma Kumaris 2-3 times and they've given me like sessions, but then it was not too long, but just a meditation session, and it really helped me. And in the matches also I could feel the difference. I think it was a very great feeling, and definitely sister, I would love to come. If there's no time also, I would make time and definitely come and do it. So and I'm very thankful because it was a dream for me, and the dream has come true. So I'm very happy. Thank you.
से बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ओलंपिक में जाने से पहले जिन्होंने हमारे आश्रम में आकर के ब्लेसिंग्स ली हैं। बहुत सारी सेवाएं हम लोग 2003 से करते आ रहे हैं राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, माइंड पावर को कैसे डेवलप करें। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि बैडमिंटन के अंदर 2003 से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, और ये मोहम्मद आरिफ सर की देन थी। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे सुनने के बाद, नहीं ये जो इनका 7 डेज का कोर्स है ये सभी एथलीट्स को हम कराएंगे और अपने लेवल पे मैं कराऊं, तो ऑफिशियली नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने अपने लेवल से ये सब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। फिर सन्नी थॉमस सर जो द्रोणाचार्य अवार्डी शूटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेशनल मेडल सबसे ज्यादा शूटिंग के अंदर आए हैं, इवन ओलंपिक भी इंडिविजुअल नीरज चोपड़ा से पहले अभिनव बिंद्रा जी एक ऐसे थे जिन्होंने इंडिविजुअली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया। तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं इनको हम अलग अलग गेम में अलग अलग हिसाब से उनको कोर्स को डेवलप किया हुआ है कि कैसे रेसलिंग के अंदर उसको हमें ट्रेन करना है। हमारी जो भी एकेडमीज हैं जैसे ORC है, वहां पे आप देख रहे हो आशा दीदी ने सभी रेसलर्स को बुला करके, और ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ये बॉक्सिंग के अंदर GS संधु सर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो ये क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप में गए थे तो ये आप देख रहे हो एक होटल के अंदर एक रूम था, तो वहां एथलीट्स आकर के वहां रिलैक्स, उनको गाइडेड मेडिटेशन मैच से पहले, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये क्रिकेट की टीम 2011 में बेंगलोर में उनके साथ थे। फिर ये अलग अलग टाइम पे कुछ एथलीट्स जैसे शिखर धवन है, उसकी काफी प्रॉब्लम आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सेंटर पे गए. सेंटर पे जा करके उन्होंने जब मेडिटेशन किया तो उनके अंदर काफी सेल्फ एम्पावरमेंट हुआ. वो बॉडी बिल्डिंग टीम के अंदर जब हंगरी में जाना हुआ तो वहां उनकी परफॉर्मेंस, एक महीने पहले अंकुर शर्मा एशिया में सेकंड था वियतनाम में, लेकिन ये व्यक्ति एक महीने के बाद जब हंगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया और इसको बताया कि आपको स्टेज पे कैसे जाना है, कैसे संकल्प करने हैं, तो इसी व्यक्ति को वहां वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला. ये माउंटेनियरिंग की एक टीम थी जो 18 एवरेस्टर्स गए थे, तवांग में इनका कैंप लगा था. तो जब इनकी 10 दिन की वहां ट्रेनिंग हुई तो अंशु जैन सप्पा ये 3 बार एवरेस्ट चढ़ चुकी है. तो इस तरह से कई लोगों को डिवाइन विजन, ऐसे साक्षात्कार भी हुए एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद. तो ये चीजें हमें जीवन में बहुत आगे ले जा सकती हैं अगर हम इन मेडिटेशन को स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस से कनेक्ट कर रहे हैं. तो अनेक कॉन्फ्रेंसेस में भी भाग लेने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशंस में, रशिया में. तो इस तरह से ये हमारी सेवाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं. और जो आपको अभी बताया था कि कैसे हम अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया है काफी बुक्स स्टडी करके कि कैसे हम अपने आप को जब कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्शन हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पे ले जाता है. दुनिया में सबसे ज्यादा जो टॉप एनर्जी का लेवल है वो है सुपर माइंड, सुप्रीम पावर, उसको कहें यूनिवर्सल सोर्स, यूनिवर्सल ऑलमाइटी अथॉरिटी. उसके बाद सेकंड नंबर एनर्जी का लेवल आता है जो भी हमारी डिवाइन प्लेसेस हैं, डाइटीज हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनसे जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को तो वो एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. फिर हमारी अपनी सोल के अंदर बहुत एनर्जी है. अगर हम सोल कॉन्शियस होकर के थोड़ी भी प्रैक्टिस करें मैच से पहले तो आप पाएंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हायर लेवल पे. और साथ ही साथ ये जितना हम नेचर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को तो प्रकृति भी हमें एनर्जी देती है. आपका कभी भी कोई मूड ऐसा लो हो जाता है, आप एक अच्छे गार्डन में जाओ, वहां थोड़ा आधा एक घंटा बैठो, वॉक करके आओ, नदी के या कभी पानी के कहीं ऐसे स्रोत के पास जा करके बैठेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी लेवल फील होगा. फुल मून होता है रात को, आपने देखा होगा कि 10-15 मिनट भी आप बैठ करके थोड़ा साइलेंस में अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें. तो इस तरह से हमें कनेक्ट करना है. तो निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इफ यू विश टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. तो ये जो एनर्जी है हमारी, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करके फिर एनर्जी जनरेट करता है. तो उसको हमें एक्टिवेट करने के लिए ये जो 7 steps हैं हमारे मेडिटेशन के, उसमें बताया कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होते जाते हैं और हम उनका फायदा ले सकते हैं. तो ये आपको सोल के बारे में बताया गया था और ये चार्ट है जिसके बारे में मैं जनरली लोगों को बताता हूं कि कैसे हमारा जो ये यूनिवर्स है एक सर्कल में बना हुआ है. लोअर पोर्शन को हम कहेंगे साकार लोक, अपर पोर्शन को हम कहेंगे निराकार लोक. फिजिकल आई से जो हमें दिखाई देता है वो ब्लू स्काई तक दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया है. तो ये जो फिजिकल आई के बाद जो हम थर्ड आई के द्वारा अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम पावर से, सुप्रीम सोर्स से, तो जब भी हम राजयोग मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी हमारी सोल के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है. सोल मतलब सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइट, जिसके अंदर MIS माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार, ये तीनों एनाटॉमी है सोल की. तो बहुत से लोग यहां आते हैं वो कहते हैं ये माइंड और ब्रेन तो एक ही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया कि माइंड इज ए सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज ए हार्डवेयर। तो ये जो एनर्जी सोल में आती है उसके बाद वो माइंड में जाती है। माइंड भी दो तरह के होते हैं, एक तो जागृत मन और दूसरा अर्ध जागृत मन। तो अभी कौन सा माइंड एक्टिवेट है? चेतन मन, है ना। तो ये जो चेतन मन है इसके पास लगभग 10% कंट्रोल रहता है लाइफ का, 90% कंट्रोल हमारे अवचेतन मन के पास है। अब हमें ये आर्ट सीखनी है कि अवचेतन मन को वो हम अपने संकल्प पहुंचाएं कैसे, उसके डिफरेंट डिफरेंट फिर टूल्स हैं। तो माइंड से जब थॉट्स जाते हैं ब्रेन के अंदर तो वहां एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। अभी हम बीटा में बैठे हुए हैं। ब्रेन को जब भी हम रीड करते हैं तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ईईजी, ऐसे ही जब हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है हम कहते हैं कि भाई इनको हार्ट अटैक हुआ है तो ईसीजी कराओ, ऐसे ही ब्रेन के लिए ईईजी। तो अगर वो इलेक्ट्रोड्स आपके अभी स्काल्प पे लगाएंगे तो यू विल बी इन 12-18 साइकिल्स पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अल्फा लेवल पे चला जाता है और संकल्प कम हो जाता है। अगर उससे भी ज्यादा संकल्प कम हो जाए तो हम थीटा लेवल में चले जाते हैं। थीटा मतलब हमें नींद आ जाती है बैठे बैठे, और अगर गहरी नींद आ जाए तो हम लोग डेल्टा वेव। तो अब इसमें जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे सुबह, दोपहर, शाम को, तो पहले जो 5-10 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैजिक टाइम है हमारी लाइफ का। और उस मैजिक टाइम को हमें या तो विजुलाइजेशन करने में या फिर मेडिटेशन करने में, अगर ये हम आदत डाल लें तो रोज हमें कम से कम 20 से 30 मिनट का जो टाइम है वो हमारी बहुत अच्छी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो सकती है। केवल हमें वर्ल्डली कोई भी घर का ऐसा काम नहीं करना है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अल्फा से बीटा में चला जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रेन से बॉडी के अंदर जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव हैं, प्योर हैं, अच्छे कामों के लिए, तो एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं। आपने देखा होगा पूरी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायमस, थायराइड, पैराथायराइड, पंक्रियास, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्ट, मेल फीमेल के अंदर। तो वो जो हॉर्मोन्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस। बहुत सारे एथलीट ओवर थिंकिंग करके जाते हैं, पता नहीं क्या जीतेंगे हारेंगे, अगर मैं हार गया तो मेरे जॉब नहीं लगेगी, मैंने इतनी मेहनत की है। तो उस ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हम स्ट्रेस मोड में आ जाते हैं। तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। हार्मोन्स का मतलब वो जो केमिकल्स हैं वो ब्लड के द्वारा हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए हम कभी भी बच्चों को, एथलीट्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके ना भेजें। आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ बच्चे जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते और डर के मारे वो एकदम एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। हम लोग एसएम हिंदू हाई स्कूल में पढ़ते थे सोनीपत में, और जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी के पास रेलवे लाइन ऐसे जा रही थी। वो देखते थे कि जब वो रिजल्ट आता था 8वीं का 10वीं का, अगर किसी बच्चे के बहुत कम मार्क्स आ गए और पेरेंट्स ने उसको पूरा प्रेशराइज किया हुआ है, अगर इतने परसेंट से कम आए तो फिर देख लेना। तो हम देखते थे कि जब रिजल्ट आता था तो वहां ट्रेन के सामने कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो जाते थे बच्चों के। तो हमें इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि मेडल नहीं आया तो फिर हमारी एकदम लाइफ ही खत्म, हम पास नहीं हुए तो हम लाइफ को ही खत्म कर लें। अभी 2-3 दिन पहले बॉम्बे में एक बॉडी बिल्डर था, काफी नामी ग्रामी, तो वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा, उसने अपने पेरेंट्स को इतना इंजर्ड कर लिया, शायद अभी उनके बचने की उम्मीद नहीं है, दोनों पेरेंट हॉस्पिटल में एडमिट। तो अभी मैं जब भुवनेश्वर गया तो वहां बॉडी बिल्डर्स ने बताया कि सर हर 6 महीने में 9 महीने में कोई ना कोई बॉडी बिल्डर वो सुसाइड कर ले। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डाइट उसमें चाहिए, इतना मेहनत उसमें है। अगर बाय चांस आपको मेडल नहीं मिला, जॉब नहीं मिली और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इतना कहाँ से लेके आए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे परिवारों के तो होते नहीं है वो एथलीट, मिडिल क्लास में या गरीब परिवारों से होते हैं। और इतना बड़ा रिस्क लेकर के हमने एक कैरियर चुना और उसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर इस टाइप की घटनाएं हो जाती हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अपने संस्कार ऐसे बना लें कि रोज मुझे 10 मिनट साइलेंस में बैठना है और अपने आप से बातें करनी है पॉजिटिव, तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, कैसी भी परिस्थिति हो इतना टॉलरेंस इतना पेशेंस आ जाएगा कि आप कभी भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे लाइफ में। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में आपने देखा हो, अगर शॉकर ना हो तो क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा धचकी लगेंगी गाड़ी के अंदर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही लाइफ के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, चाहे आप लौकिक दुनिया में हैं, अलौकिक में हैं, हर जगह आपको चैलेंजेस मिलेंगे, डिफेमेशन मिलेंगी, क्रिटिसिज्म मिलेगी, ईर्ष्या भी करेंगे लोग, और वो चीजों से आदमी ग्रो होता है, प्रोवाइडेड आपका ज्ञान योग और धारणाएं अच्छी हो, हमारी पवित्रता अच्छी हो, हम चरित्रवान हो, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना घट जाए कि हम एक्सट्रीम स्टेप लेने की नौबत आ जाए। कितने कैंप हैं जहां बच्चियां ट्रेनिंग करती हैं और इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई फलाने कोच का ऐसे ऐसे उनके साथ कनेक्शन है। और साइकिलिंग में हमने देखा, कई इसमें रेसलिंग में सुनने को मिला, कबड्डी में भी ऐसे सुनने को मिला। तो फिर हमारी डाइट, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग वो सब क्या करेगी अगर हमारे मान लो धारणाएं अच्छी नहीं है। माँ बाप ने अपनी बच्ची को भेजा कैंप में और वहां कुछ और ही सुनने को मिल जाए तो माँ बाप का जीना भारी हो जाता। तो जब हम 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन ऐड करके इस टाइप की बातों से बच सकते हैं तो इसमें कोई बुराई है? तो ये चीजों को हम साधारण ना लें कि मेडिटेशन देखा जाएगा, इससे कुछ नहीं है, हमें तो मेहनत करनी है, फिजिकल मेहनत करनी है, डाइट अच्छी खानी है, ये सब करना है, डाइट भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, लेकिन माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को एक दिशा देने के लिए हमें ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। 5 to 10 मिनट, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड इट विल कंट्रोल यू। तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए जो यहां दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है ये 5 टूल्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो मैं अभी आपको ये कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं, जो आत्मा के अंदर वॉइसेज होते हैं यही हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। एंगर है, सबसे ज्यादा होता है एंगर से, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए। कहते हैं कि इफ यू कैन लर्न टू टॉलरेट द नॉनसेंस ऑफ द पीपल यू कैन हैव ए मेंटल पीस। आप देखेंगे कि जिनमें थोड़ा मैनर नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बस में बैठे हैं आपको पीछे से सीट को छेड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इस टाइप की नॉनसेंस करते रहते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आकर के अगर आप किसी को समझाएंगे तो उसको डबल गुस्सा आ जाएगा। तो आप उसी टाइम अपने आप को संकल्प दें कि मुझे थोड़ा सा टाइम के बाद में इसको समझाऊंगा प्यार से। एक बार हम बस में जा रहे थे तो खिड़की खोल दी साइड की, पीछे वाले ने बोला कि तुमने खिड़की खोल दी, इतनी हवा आ रही है। ये छोटी सी बात से इतनी लड़ाई हो गई उनके अंदर, कि वो मतलब बहुत एक दूसरे को चोट भी आ गई। तो अगर वही चीज हम एक शांति से प्यार से उनको बोले तो हम इतनी बातों को अवॉइड कर सकते हैं। अटैचमेंट आजकल ट्रेंड आप देख रहे हो, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, किसी से अगर एक वीक में कोई मैसेज नहीं आया तो इतने परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारी चीजें जब हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे तो इस अटैचमेंट को हम ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कैंप में कि नहीं एक महीने दूर कैसे रहेगा हमारे से, हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके बिना। अब रहने वाले दिल्ली के हैं, कैंप है बैंगलोर में, एक महीने बैंगलोर फिर चेन्नई फिर फॉरेन जा रहे हैं, तो अटैचमेंट अगर बहुत ज्यादा होगा बच्चों को तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकते। ईगो किसी भी तरह की ईगो हो सकती है, आप बहुत अच्छे घर से हैं, साधारण लोगों के साथ एडजस्ट होकर के नहीं चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं तो अनएजुकेटेड लोगों के साथ एडजस्ट होकर के नहीं चल रहे हैं, तो इससे भी हमें मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम डाउन टू अर्थ रहे, एक बार अब्दुल कलाम जी आए थे यहाँ तो हम लोग उनको रिसीव करने गए अहमदाबाद एयरपोर्ट स्टेशन पे, तो उनकी लाइफ को देख करके मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा आई अपनी लाइफ के अंदर, उनका ये व्यक्ति ऐसे इतना सिंपल कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि अशोक भाई गावा जी हमारे यहाँ जो मैनेजर स्क्वाड्रन लीडर मैनेजर हैं इस संस्था के, तो उनको बताया कि भाई कोई सिक्योरिटी स्टाफ नहीं होना चाहिए, मैं आपके आश्रम में तो आ सकता हूँ। तो मैं था, एक अशोक भाई थे और एक अच्छे एथलीट थे, तो हम जब एयरपोर्ट पे गए और वो अंदर से बाहर आए तो पुलिस वाले भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे, जैसे ही वो बाहर आए एकदम बहुत फास्ट गति से ऐसे गए, तो पुलिस वालों ने विश्वास ही नहीं किया कि अब्दुल कलाम जी होंगे। तो जब हमने बताया कि ये अब्दुल कलाम जी हैं तो फिर वो फटाफट तैयार होकर उनके पीछे लगे, तब तक तो वो गाड़ी में बैठ गए। उनके वहां से अहमदाबाद से यहाँ आए, यहाँ तीन दिन रहे, तो मैंने देखा कि ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतनी बड़ी इनकी अचीवमेंट्स हैं और बिल्कुल कोई उनके अंदर इतना अहंकार नहीं, और ये चीज उन्होंने लास्ट तक मेंटेन रखा। आपने सुना होगा जब राष्ट्रपति भवन से वो जब गए तो 6 आइटम वो लेकर गए राष्ट्रपति भवन से, और राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद भी उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जब हम डाउन टू अर्थ रहते हैं लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा हमारी डिमांड्स नहीं होती, एडजस्ट करने की नेचर होती है, तो हम लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। फिर है फियर, कई बार बाई एयर जाने का फियर हो जाता कि कहीं गिर ना जाए, कहीं मैं हार ना जाऊं, तो ये सारे हमारे स्ट्रेस हार्मोन के रीजन बनते हैं। और जो भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है आश्रम में वो यही है कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर काम करो तो आपको ये डर निकल जाएगा। इसके लिए कुछ अफर्मेशंस भी हैं, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, आई एम ग्रेट, अपने बारे में एक अच्छे अफर्मेशन बना करके और उनको 10-20 बार साइलेंस में बैठ के और उसका रिपीटिशन करें। फिर है ग्रीड, लालच। आप देखो हमारी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से अगर हम चलाएं तो बहुत ऊंची लाइफ हम जी सकते हैं। अब क्रिकेटर्स हैं, उनको कितने पैसे मिलते हैं आईपीएल में, उनका कैरियर सबसे ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो होता है बहुत कम टाइम में। अब जायसवाल आप देखो कितना अच्छा कर रहे हैं और इतने सिंपल परिवार से आए, तो पैसे की अभी कमी नहीं रही। आपने देखा होगा कुछ लोग मैच फिक्सिंग में लग जाते हैं, देखा ना, और कई तो प्रूव भी हो गए कि भाई उन्होंने 25 लाख लिए, किसी ने कितने लाख लिए। अगर वो इस ग्रीडी नेचर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो आज वो करोड़ों के मालिक होते हैं और समाज में उनका एक अच्छा नाम भी होता। तो ये चीजें हम 7 दिन के कोर्स में सभी एथलीट्स को ट्रेंड करते हैं कि इन चीजों को ओवरकम कैसे करना है। लेजीनेस है, आप देखेंगे कि ज्यादातर पेरेंट्स जैसे संडे होगा तो बच्चे को मतलब कह देते हैं थोड़ा रेस्ट करो, भले वो 8-9 बजे तक उठ सो के उठ रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज सुबह जल्दी उठ करके हम प्रैक्टिस करें, 4-5 किलोमीटर वॉक करने जाएं, रनिंग करने जाएं, तो बच्चों को अगर हम ऐसी ट्रेनिंग दें तो वो ज्यादा जीवन में ग्रो कर सकते हैं। फिर लस्ट है ना, कोई नेगेटिव चीजें आजकल यूट्यूब में ऐसे लिटरेचर हैं, तो इस चीज से हमें बचाने के लिए बच्चों को मेडिटेशन की ट्रेनिंग अगर हम देंगे तो वो तुरंत देख करके पहचान जाएंगे कि ये नेगेटिव चीजें हैं और इनसे हमें दूर रहना है, अपने माइंड को इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे ही पॉजिटिव चीजें भी हैं, नॉलेज है, प्योरिटी है, पीस है, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, जब ये 6 की 6 चीजें होती हैं तो हमें पावर मिलती है हमारी लाइफ के अंदर। तो इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है अपने आप में, लेकिन ये आप 7 डेज के कोर्स में पूरा ये 1 by 1 कवर करेंगे। फिर ये 5 चीजें मेरे समझ में अभी तक आई हैं, जो भी मैंने पढ़ाई की है, जितने भी मैंने कैंप देखे हैं, जितने भी स्पीकर्स को सुना है, दुनिया की सारी ट्रेनिंग इन 5 टूल्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो नंबर 1 है मेडिटेशन, कनेक्टिंग द सेल्फ विद द हायर सेल्फ, जो आपको पूरा दिन अभी भी बताएंगे लास्ट तक 16 तारीख तक, इसी के ऊपर सारे सेशंस हैं। फिर है विजुलाइजेशन, आपने देखा होगा माइकल फेल्प्स, नाम सुना है? तेजस है क्या यहाँ पर? तेजस बैठा है क्या? माइकल फेल्प का पता है कौन से गेम में? स्विमिंग। उन्होंने कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक में? कितने? 23। माइकल फेल्प ने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं आज तक, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये इतने मेडल कैसे जीत रहे हो, दुनिया में तो कोई जीत ही नहीं पाया, 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे विजुलाइज करता हूं अपने गेम में, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। बहुत सारे ओलंपियंस हैं जो विजुलाइजेशन का सहारा लेकर के और ओलंपिक में उन्होंने सफलता हासिल की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। अगर हमारा विजन अच्छा है, धीरू भाई अंबानी का कितना बड़ा विजन था, 500 रुपए से व्यापार स्टार्ट करके, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके पास 50,000 करोड़ से भी ज्यादा एम्पायर था। तो बहुत से ऐसे विजनरी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। तो विजुलाइजेशन के लिए वो जो टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, अल्फा लेवल का टाइम, 1 मिनट भी आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि जब सुबह, जब रात को सोते हैं तो पहले पूरे दिन को विजुलाइज करें, कैसे कैसे मैंने आज की दिनचर्या अपनी व्यतीत की। फिर जब दूसरे दिन सो के उठते हैं फिर मोटे तौर पे पूरे दिन को सेट कर दें, मुझे अभी ये करना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर दिन में जो भी काम करने हैं, शाम के टाइम ये करना है, ये बुक पढ़नी है, जो भी आपके काम आपके माइंड में है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो दिनचर्या है वो आपके शेड्यूल के अनुसार व्यतीत हुई है, ना कि कोई व्यक्ति दिखाई दे गया उनके साथ चल दिए, फिर 2-3 घंटे कहीं और चले गए, तो हमारा वैल्यूएबल टाइम वो वेस्ट हो जाता। इन टूल्स के अलावा भी आप रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप उनके साथ यूज कर सकते हो। फिर है अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब प्रेजेंट टेंस का 1-line sentence। मान लो मेडिटेशन नहीं हो रहा, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, विजुलाइज कर रहे हैं तो जो चीज आप देखना चाहते हो वो नहीं मतलब सक्सेस मिल रही आपको, आपको मेंटली किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, कुछ बोल दिया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, तो उस समय विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। that time you can make use of the affirmation. Gyan marg mein hum kehte hain swaman. Affirmation matlab, I can do it, I am champion, I am great, I am wonderful, like this. तो ये एक्सरसाइज हम लोग कभी कभी कराते हैं, क्योंकि बैठे बैठे काफी टाइम हो जाता है ना आपको, तो कराएं एक्सरसाइज थोड़ा। अजय भाई करा दें, तो अपनी वहां थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं ऐसे दोनों हाथों से आपको ऐसा बोलूंगा, आई कैन डू इट, तो आप ये दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे एंड विद फुल एनर्जी यू विल से I can do it. Inhale positive energy, exhale negative energy. Okay? That's it. I can do it. Yes, मैंने किया ना, थोड़ा boldly ऐसा आवाज निकाली और पूरा ऐसे किया। अभी एक दो बच्चे ऐसे करें, I can do it. Do it with some emotions and feelings. Okay? That's it. I can do it. I am champion. I am wonderful. I am winner. तो इस तरह से मिरर के सामने खड़े होके जो भी अफर्मेशन आप बना सकते हैं, आपका हेल्थ अच्छी नहीं है, आई एम हेल्दी, आपको वेल्थ चाहिए, आई एम वेल्दी, तो वो अफर्मेशन की एक लंबी लिस्ट है, उसकी लिस्ट आप गूगल में भी देख सकते हैं, टाइप करेंगे तो बहुत सारे अफर्मेशन आ जाते हैं। पांच पांच अफर्मेशन आप जैसे एक वीक के लिए आपने सेट किया, तो वो अफर्मेशन के द्वारा भी आप अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं। ओके, एक जनरल अफर्मेशन भी है, वो भी हम कर सकते हैं, लाइक विल डू इट डे बाय डे, एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, हेल्दी एंड हेल्दी, वेल्दी एंड वेल्दी। सो जनरल अफर्मेशन भी सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो लोग कर सकते हैं, ताकि उनको कोई टेंशन, डिप्रेशन या लो मूड फील ना हो। जैसे आप ये अफर्मेशन करेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी का फील होगा, एनर्जी का सोर्स फील होगा। सो थैंक यू, टेक योर सीट। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, सेल्फ टॉक। हमें किसी के लिए भी ज्यादा लंबे समय तक नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग हो या ना हो, हमारे अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन भी आएंगे, नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी और लो मूड भी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो आपके अपोजिशन में है, कोई भी व्यक्ति जो आपको बार बार परेशान करता है, आपकी नेगेटिविटी फैलाता है पूरी सोसाइटी के अंदर, और जो भी उसके संपर्क में आते हैं, आपने देखा होगा उसका काम ही बस ये है कि सुबह से शाम तक नेगेटिविटी फैलाते रहना, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो कभी भी उसका मूड ठीक नहीं रहेगा, उसका एनर्जी लेवल लो रहेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार, हर चीज अफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती। तो हम सेल्फ टॉक को ऐसी तरह से चेंज करें कि किसी भी व्यक्ति की एक विशेषता को अपने मन में ला करके और उसकी जो नेगेटिविटी हमसे कनेक्ट हो गई है उसको हम डिसकनेक्ट कर दें। जब भी हम किसी व्यक्ति से 80 सेकंड से ज्यादा मिलते हैं तो सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता है, तो एक कॉर्ड उससे कनेक्ट हो जाती है। अगर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसको वो एनर्जी मिलती रहती, तो उसको हम डिस्कनेक्ट करने के लिए उसकी कोई एक विशेषता को लेकर के और हम अपने आप में रहें और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। फिर है साइलेंस। कुछ भी टाइम अगर हमने ऐसा टाइम फिक्स कर दिया कि ये टाइम मुझे साइलेंस में रहना है, मोबाइल केवल स्विच ऑफ नहीं, मोबाइल जेब में ही नहीं रखना है उस टाइम, थोड़ा सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम वॉक में चले जाओ, छत के ऊपर चले जाओ, और अपना साइलेंस में भी अगर आपने आधा घंटा भी रोज ऐसा फिक्स कर दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके इंट्यूशन के द्वारा जो भी आपको गाइडेंस चाहिए इनर माइंड से, वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, दो दिन, मैक्सिमम तीन दिन में, 72 आवर्स के अंदर आपकी इंट्यूशन आपको पूरा गाइड कर देगी कंपास के तरह कि आपको ये करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये डिसीजन लेना है। पूरा मैकेनिज्म सारा अंदर है, हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर ही बैठा हुआ, केवल उससे हमें कम्युनिकेट करना है, उसको टाइम देना है सोचने के लिए और फिर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये पांच टूल हैं जिनके द्वारा, ये कुछ हमारी सोशल मीडिया के कनेक्शंस हैं जहां हम कुछ कुछ न्यूज वगैरह डालते रहते हैं, अफर्मेशन यूट्यूब में जो भी वीडियोस होती हैं तो वो हम सेवा के समाचार यहाँ डालते रहते हैं। तो आप सभी में जिसको भी कोई ऐसा कैंप अपने वहां ऑर्गेनाइज करना हो राजयोग का, मेडिटेशन का, फॉर माइंड पावर डेवलपमेंट, तो हमारे फैकल्टीज वो ट्रेनिंग वहां करा सकते हैं। तो आज से सिर्फ आपको सो के उठने के बाद एक मिनट का टाइम अपने लिए डीप साइलेंस में बैठ के देना है और उसको बढ़ाते बढ़ाते 5 से 10 मिनट तक ले जाना है। कोई भी प्रॉब्लम आए नियरेस्ट सेंटर में जाकर के बहनों से आप कम्युनिकेट करें कि बहन जी जब मैं साइलेंस में बैठता हूं तो मुझे ये बातें आती हैं माइंड में, तो हर संकल्प का आपको वो सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक से एक एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर बहने हैं, भाई हैं, सूरज भाई अभी यहाँ हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपको ये पूरी मदद मिलेगी। जब भी आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, यू कैन कम्युनिकेट विद आवर फैकल्टी मेंबर्स। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, देन आई विल एंड माय सेशन। एक चीज और मैं बताता हूं, REED, रेस्ट एक्सरसाइज एंड डाइट, काइंडली इसमें बैलेंस रखें, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, स्टूडेंट हैं। अगर आप 2-3 बजे तक पढ़ते हैं रात को, सुबह 8 बजे एग्जाम देंगे, तो चांसेस हैं कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो जितनी कि आप रात को 9 और 10 बजे सो जाएं और सुबह 3 और 4 बजे उठ करके पढ़ना स्टार्ट करें। तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के टाइम को अगर हम अपनी स्टडी के लिए या मेडिटेशन के लिए यूज करेंगे तो हम जीवन में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 घंटे का मैनेजमेंट है, 10 मतलब बस, और सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कर लें, कोशिश करके रात को 9 बजे के बाद मिनिमम यूज हो। कोई इमरजेंसी है ना तो फिर बात अलग है, अदरवाइज ट्राई टू यूज दीज गैजेट्स फ्रॉम 9 AM to 9 PM, और 9 PM to 9 AM उसको थोड़ा कम कर दें, बुक्स पढ़ लें, कुछ राइटिंग का काम कर लें। तो ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर रीडिंग करने से हमारे अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रेन की लोगों को, रात को सोने से पहले मेलेटोनिन करके जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज नहीं होते, वो डिले हो जाते हैं, फिर नींद नहीं आती, जो हमारा बायो क्लॉक अंदर बॉडी के अंदर है वो फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, और उसके काम ना करने से टेंशन, डिप्रेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू, ओम शांति।
प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से। शेर हूँ।